एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudadventist.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudadventist.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से।
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे, कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु त्यागेगा, कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे।
तक सदा तेरे साथ।
साथ रहूंगा, यीशु ने कहा। कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। हथेली में चेहरा तेरा मैंने खोद रखा है, कभी ना भूलूंगा।
अपनी हथेली में चेहरा तेरा मैंने खोद रखा है, कभी ना भूलूंगा।
अपनी आंखों की पुतली समा रखता हूँ मैं तेरा पूरा ध्यान। कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे, लज्जित नहीं होंगे, लज्जित नहीं होंगे।
अब समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर परमेश्वर का सेवक परमेश्वर का वचन लेकर आपके पास आता हूँ। आइए हम उसका वचन सुनने से पहले परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं, हमारे मन हृदयों को खोल दे और तेरा वचन को समझने के लिए मदद कर पिता। मेरे हरेक श्रोताओं के संग हो, उन्हें तेरा वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे और मेरे संग हो पिता, तेरा पवित्र आत्मा का वरदान दे ताकि मैं तेरे वचन को तेरे सामर्थ के साथ बतला सकूं। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। प्यारो, आज का चर्चा का विषय है कलीसिया की एकता, उसका महत्वपूर्णता और प्राप्ति। आज इसी विषय में हम लोग बातें करेंगे। कलीसिया के लिए एकता जरूरी है, इसके बिना कलीसिया अपने पवित्र विशेष कार्य को पूरा करने में विफल रहेगी। एकता कलीसिया के प्रयासों को प्रभावी बनाती है। असहमति और संघर्ष से टूटी दुनिया में विभिन्न व्यक्तियों, स्वभावों और मनोवृत्ति के कलीसिया के सदस्यों के बीच प्रेम और एकता कलीसिया के संदेश की किसी और चीज की तुलना में अधिक शक्तिशाली रूप से गवाही देती है। यह एकता स्वर्ग के साथ उनके संबंध और मसीह के शिष्यों के रूप में उनकी पहचान की वैधता का निर्विवाद प्रमाण प्रदान करती है। यूहन्ना 13:35 यह परमेश्वर के वचन की शक्ति को सिद्ध करती है। तथा कथित मसीहों के बीच संघर्ष ने अविश्वासियों में घृणा पैदा कर दी है और शायद यह मसीह धर्म को स्वीकार करने में सबसे बड़ी बाधा है। विश्वासियों के बीच सच्ची एकता एक मनोवृत्ति को कम करती है। यह संसार के लिए एक प्रमुख प्रमाण है। मसीह ने कहा कि वह उनका उद्धार करता है, यूहन्ना 17:23। एकता परमेश्वर के राज्य की वास्तविकता को प्रकट करती है। पृथ्वी पर वास्तव में एकजुट कलीसिया यह प्रकट करती है कि इसके सदस्य स्वर्ग में एक साथ रहने की अपनी अपेक्षा में गंभीर हैं। पृथ्वी पर एकता परमेश्वर के अनंत राज्य की वास्तविकता को प्रदर्शित करती है। जो लोग इस तरह से जीते हैं उनके लिए पवित्र शास्त्र पूरा होगा कि देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। भजन संहिता 133 का एक। एकता कलीसिया की ताकत दिखाती है। एकता ताकत लाती है, फूट कमजोरी लाती है। एक कलीसिया वास्तव में समृद्ध और मजबूत होती है जब उसके सदस्य मसीह और एक दूसरे के साथ एकजुट होते हैं, दुनिया के उद्धार के लिए सद्भाव में काम करते हैं। तब और केवल तभी वे सच्चे अर्थों में परमेश्वर के सहकर्मी हैं। पहला कुरिन्थियों 3:9। मसीह एकता प्रेमहीन स्वार्थ से टूटी हमारी बढ़ती हुई विभाजित दुनिया को चुनौती देती है। एकीकृत कलीसिया संस्कृति, नस्ल, लिंग और राष्ट्रीयता से विभाजित समाज के लिए उत्तर दिखाती है। एक एकीकृत कलीसिया शैतानी हमलों का विरोध करेगी। वास्तव में अंधकार की शक्तियां उस कलीसिया के विरुद्ध नपुंसक हैं जिसके सदस्य एक दूसरे से वैसा ही प्रेम करते हैं जैसा मसीह ने उनसे प्रेम किया है। एक एकीकृत कलीसिया के सकारात्मक और सुंदर प्रभाव की तुलना ऑर्केस्ट्रा के प्रदर्शन से की जा सकती है। संगीत संचालक के प्रकट होने से पहले जब संगीतकार अपने वाद्य यंत्रों को धुनते हैं और तैयारी करते हैं तो वे एक कर्कश ध्वनि उत्पन्न करते हैं। हालांकि जब संचालक प्रकट होता है तो अराजक शोर बंद हो जाता है और सभी की निगाहें उस पर केंद्रित हो जाती हैं। ऑर्केस्ट्रा का हर सदस्य तैयार होकर बैठता है और जैसा वह निर्देशित करता है प्रदर्शन करने के लिए तैयार होता है। संचालक के नेतृत्व में ऑर्केस्ट्रा सुंदर सामंजस्यपूर्ण संगीत को पैदा करता है। मसीह की देह में एकता का अर्थ है मेरे जीवन के वाद्य यंत्रों को दिव्य संचालन की छड़ी के नीचे बुलाए गए लोगों के महान ऑर्केस्ट्रा में मिल जाना। सृष्टि के मूल रूप को चिन्हित करते हुए उसके इशारे पर हमें मानव जाति के लिए परमेश्वर के प्रेम के संगीत को प्रदर्शित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। एकता की प्राप्ति कैसे होता है? यदि कलीसिया को एकता का अनुभव करना है तो इसे लाने में परमेश्वर और विश्वासियों दोनों को शामिल होना चाहिए। एकता का स्रोत क्या है? इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है? विश्वासी क्या भूमिका निभाते हैं? पवित्र शास्त्र बताता है कि एकता अपने स्रोतों को पहला पिता की बनाए रखने की शक्ति यूहन्ना 17:11 और दूसरा पिता की महिमा जो मसीह ने अपने अनुयायियों को दी यूहन्ना 17:22 और तीसरा मसीह का विश्वासियों में निवास यूहन्ना 17:23 करने में पाती है। पवित्र आत्मा मसीह की देह के बीच में मसीह का आत्मा वह जोड़ने वाली शक्ति और उपस्थिति है जो प्रत्येक खंड को एकजुट रखती है। एक पहिए का धुरा और तिलियों की तरह कलीसिया के सदस्य तिलियां मसीह धुरा के जितने करीब आते हैं वे एक दूसरे के उतने ही करीब आते हैं। कलीसिया और परिवार में सच्ची एकता का रहस्य कूटनीति नहीं है, प्रबंधन नहीं है, कठिनाइयों को दूर करने के लिए एक अति मानवीय प्रयास नहीं है। हालांकि इनमें से बहुत कुछ करना होगा लेकिन मसीह के साथ मिलन है। पवित्र आत्मा एकीकृत करने वाले के रूप में मसीह का आत्मा और सत्य का आत्मा के रूप में पवित्र आत्मा एकता लाता है। पहला एकता का केंद्र बिंदु। जैसे ही आत्मा विश्वासियों में प्रवेश करता है वह उन्हें संस्कृति, नस्ल, लिंग, रंग, राष्ट्रीयता और स्थिति के मानवीय पक्षपात से आगे जाने के लिए प्रेरित करता है। आप देखें गलातियों 3:26-28। वह मसीह को हृदय में लाकर इसे पूरा करता है। जिन लोगों में वह रहता है वे स्वयं पर नहीं यीशु पर ध्यान केंद्रित करेंगे। मसीह के साथ उनका मेल आपस में एकता के बंधन को स्थापित करता है। वास करने वाले आत्मा का फल फिर वे अपने मतभेदों को कम करेंगे और मसीह की महिमा के लिए विशेष कार्य में एकजुट हो जाएंगे। दूसरा, एकता प्राप्त करने में आध्यात्मिक उपहारों की भूमिका। कलीसिया की एकता का लक्ष्य कितना प्राप्य है। जब मसीह ने स्वर्ग में अपने पिता के निकट से अपना मध्यस्थ कार्य शुरू किया तो उसने निश्चित किया कि उसके लोगों को एकजुट करने का लक्ष्य भ्रम नहीं था। पवित्र आत्मा के माध्यम से उसने विशेष उपहार दिए जो विशेष रूप से विश्वासियों के बीच विश्वास की एकता स्थापित करने के लिए थे। इन उपहारों पर चर्चा करते हुए पौलुस ने कहा, मसीह ने कितनों को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कितनों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। ये उपहार कलीसिया को दिए जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे डिलडॉल तक ना बढ़ जाए। इफिसियों 4:11-13। इन अद्वितीय उपहारों का लक्ष्य आत्मा की एकता को विश्वास की एकता में विकसित करने का है। इफिसियों 4:3-13। ताकि विश्वासी परिपक्व और दृढ़ हो और हम आगे को बालक ना रहें जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों की और उपदेश की हर एक बयार से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हों। इफिसियों 4:14। इन उपहारों के माध्यम से विश्वासी सत्य को प्रेम से बोलते हैं और कलीसिया के प्रमुख मसीह के रूप में विकसित होते हैं। प्रेम की एक गतिशील एकता को विकसित करते हैं। मसीह में पौलुस ने कहा, सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ घटकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक भाग के परिमाण से उसमें होता है अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। इफिसियों 4:16। तीसरा, हम देखेंगे एकता का आधार या सत्य का आत्मा। यूहन्ना 15:26 के रूप में है कि पवित्र आत्मा मसीह की प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए कार्य करता है। उसका कार्य विश्वासियों को सभी सत्य की ओर ले जाना है। यूहन्ना 16:13 कहता है। तो स्पष्ट है कि मसीह केंद्रित सत्य एकता का आधार है। आत्मा का विशेष कार्य विश्वासियों को सत्य जैसा कि यीशु में है में मार्गदर्शन करना है। इस तरह के अध्ययन का एक एकीकृत प्रभाव होता है। फिर भी केवल अध्ययन ही सच्चा मिलन लाने के लिए पर्याप्त नहीं है। केवल विश्वास करना, जीना और सत्य का प्रचार करना जैसा कि यीशु में है सच्चा मिलन लाता है। सहभागिता, आत्मिक उपहार और प्रेम सभी बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु उनकी परिपूर्णता उसके द्वारा आती है जिसने कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। यूहन्ना 14:6। मसीह ने प्रार्थना की, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। यूहन्ना 17:17। एकता का अनुभव करने के लिए विश्वासियों को उस ज्योति को प्राप्त करना चाहिए जैसे कि वचन से चमकती है। जैसा कि यह सत्य यीशु में है हृदय में बसता है, यह सभी पक्षपात और टकराव को दूर करते हुए जीवन को परिष्कृत, उन्नत और शुद्ध करेगा। मसीह ने नई आज्ञा दी। मनुष्य की तरह कलीसिया को परमेश्वर की छवि में बनाया गया था। जैसे परमेश्वर के प्रत्येक सदस्य में दूसरों के लिए प्रेम है, वैसे ही कलीसिया के सदस्य एक दूसरे से प्रेम करेंगे। मसीह ने विश्वासियों को आज्ञा दी है कि वे दूसरों को अपने समान प्रेम करके परमेश्वर के प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित करें। मत्ती 22:39। यीशु ने स्वयं कलवरी में प्रेम के सिद्धांत को चरम तक पहुंचाया। अपनी मृत्यु से ठीक पहले उसने अपने शिष्यों को एक नई आज्ञा देते हुए पहले दिए गए आदेश को आगे बढ़ाया, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यूहन्ना 15:12। और इसे आप तुलना कर सकते हैं यूहन्ना 13:34 से। यह ऐसा था मानो वह उनसे कह रहा था, मैं कह रहा हूँ कि तुम अपने अधिकारों के लिए खड़े ना होना, ना ही यह देखना कि तुम्हें तुम्हारा हक मिल जाए। अगर ना मिले तो मुकदमा ना करना। मैं तुमसे कोड़े खाने के लिए, अपनी पीठ को फेरने के लिए कह रहा हूँ, अपने दूसरे गाल को फेरने के लिए, झूठा आरोप लेने के लिए, मजाक उड़ाए जाने के लिए, उपहास सहने के लिए, चोट खाने के लिए, तोड़े जाने के लिए, एक क्रूस पर कीलों से ठुकने और दफनाए जाने के लिए कह रहा हूँ, यदि यह दूसरों से प्रेम करने के लिए जरूरी है, क्योंकि वह दूसरों से वैसा ही प्रेम करना है जैसा मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। असंभव संभावना, क्योंकि मसीह के देह में एकता देहधारी है, अर्थात देहधारी वचन के द्वारा परमेश्वर के साथ विश्वासियों की एकता। दूसरा, क्रूस पर एकता। कलीसिया की एकता क्रूस पर होती है। केवल जब हम यह महसूस करते हैं कि हम यीशु की तरह प्रेम नहीं कर सकते और ना ही करते हैं, तभी हम उसकी स्थायी उपस्थिति की अपनी आवश्यकता को स्वीकार करते हैं और उस पर विश्वास करते हैं जब उसने कहा, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते, यूहन्ना 15:5। क्रूस पर हमें एहसास होता है कि वह सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि पृथ्वी के प्रत्येक व्यक्ति के लिए मरा। इसका मतलब है कि वह सभी राष्ट्रीयताओं, जातियों, रंगों और वर्गों से प्रेम करता है। वह प्रत्येक को समान रूप से प्रेम करता है, चाहे उनके मतभेद कुछ भी हो। इसलिए एकता परमेश्वर में निहित है। मनुष्य की संकीर्ण दृष्टि लोगों को अलग करती है। क्रूस मानव अंधेपन के पार जाती है और इंसानों पर परमेश्वर की कीमत लगा देती है। इससे पता चलता है कि कोई भी बेकार नहीं है, सबकी आवश्यकता है। यदि मसीह उनसे प्रेम करता है तो हमें भी करना चाहिए। जब मसीह ने भविष्यवाणी की थी कि उसका क्रूस पर चढ़ना सभी को अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो उसका मतलब था कि स्वयं की चुंबकीय खींचने की शक्ति पीड़ितों में सबसे बड़ा उसकी देह कलीसिया में एकता लाएगी। स्वर्ग और हमारे बीच की विशाल खाई, जिस खाई को मसीह ने पार किया है, सड़क या कस्बे के पार जाने के लिए एक छोटा सा कदम अपने भाई तक पहुंचने के लिए जो हमें लेना चाहिए, कुछ भी नहीं है। कलवरी का अर्थ है एक दूसरे का भार उठाओ, गलातियों 6:2। उसने सारी मानव जाति का सारा बोझ उठा लिया, जिसने उसके जीवन को कुचल दिया, ताकि वह हमें जीवन दे सके और हमें एक दूसरे की मदद करने के लिए स्वतंत्र कर सके। आइए हम एकता के लिए कदम उठाएं। एकता अपने आप नहीं आती, विश्वासियों को इसे सुरक्षित करने के लिए कदम उठाने चाहिए। पहला हम कर सकते हैं, घर में एकता। पहले हम लोग अपने घर में एकता ला सकते हैं। इस प्रयास से हम आगे कलीसिया में एकता ला सकते हैं और अपने भाई बहनों में एकता ला सकते हैं। दूसरा है, एकता लाने का लक्ष्य बनाएं। हमें प्रतिदिन एकता के लिए प्रार्थना करनी चाहिए और ध्यान से उसकी साधना करनी चाहिए। तीसरा है, एक समान लक्ष्य की दिशा में मिलकर हम काम करें। चौथा है, एक वैश्विक दृष्टिकोण विकसित करने की हम कोशिश करें, हम प्रयास करें। और पांचवा है, ऐसे दृष्टिकोणों से बचे जो विभाजित करते हैं। जिस प्रकार हमारा प्रभु मनुष्य का पुत्र आदम के प्रत्येक पुत्र और पुत्री के लिए भाई बना, उसी प्रकार हमें उसके अनुयायियों को हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों के हमारे भाई और बहनों तक एक मुक्तिदायक तरीके से मन और विशेष कार्य की एकता में पहुंचने के लिए बुलाया गया है, जैसा हम पाते हैं प्रकाश वाक्य 14:6। तो आइए हम प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा हम में वास करें और हम में एकता लाए, भाई बहनों में एकता लाए और हमारे कलीसिया में एकता लाए और हम उसमें बढ़ें। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे दयालु महान परमेश्वर पिता, हम तेरे वचन के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हम तेरे पास आते हैं, हमें तेरा पवित्र आत्मा से तृप्त कर और हमारे बीच में आत्मिक एकता ला और हम तू इसमें बढ़ते जाने से पिता, और हमें स्वर्ग राज्य कर। यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगते हैं, सुना ग्रहण कर, आमीन।
मेरे प्रभु मैं तेरी स्तुति करूंगा, मैं तेरी स्तुति करूंगा। विश्वास योग्य मेरे प्रभु मैं तेरी स्तुति करूंगा, मैं तेरी स्तुति। करुणा से बुलाया है और मुझे संभालता है, और मुझे संभालता है, इसलिए मैं तुझे भजूंगा और तेरी स्तुति करूंगा। विश्वास योग्य मेरे प्रभु मैं तेरी स्तुति करूंगा, मैं तेरी स्तुति करूंगा।
इसके साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1800833231 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindisamc@sudavenTIST.org।
मैं हूं गौरव चौहान
और मैं हूं सारा मंडोरा। AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें। तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।